ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಸಮಸ್ತ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣೇ ನಿರತಂ ಕರುಣಾಮಯಂ ನಮಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಂ ದೇವಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ವನಂ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾನೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ.
हमने पिछले चैप्टर में देखा कि शोक जरूर आएंगे. हर मनुष्य के जीवन में शोक जरूर आएंगे. क्यों आएंगे? मात्रा स्पर्शास्ते तो कौनते है. जैसे ही आपकी ज्ञानेन्द्रिया विषयों के साथ में संपर्क होगा तो उसके अंदर आपको सुख दुख या शीत उष्ण आएगा ही, अवश्य आएगा. क्यों अवश्य आएगा? इसलिए आएगा कि मनुष्य का जीवन आपको तभी मिलता है जब आपके पाप और पुण्य मोर और लेस इक्वल हो. जब पाप ज्यादा होता है तो आपका कहां आपका जन्म होगा? लोअर योनि में. और अगर पुण्य आपका ज्यादा है हायर योनि में. जब पाप और पुण्य इक्वल हैं तो आपका मनुष्य जीवन. अगर आपने पुण्य किए हैं तो आपको दुख मिलेगा या सुख? और अगर पाप किए हैं तो? अगर हर मनुष्य के पीछे में पाप और पुण्य इक्वल हैं तो हर मनुष्य को सुख और दुख मिलेगा. तो अगर आपसे कोई कहे कि हमको हमारे जीवन में दुख नहीं आया, झूठ बोलता है वो. अगर कोई कहे कि हमें जीवन में सुखी नहीं मिला कभी, वो भी झूठ बोलता है. तो ये आएंगे ही आएंगे, मगर इसको हम फेस कैसे करें? तो पहला उपाय बताया गया. उपाय नंबर एक क्या था? सम रहो. वेरी गुड. कम से कम याद तो है हमको. अप्लाई करें या ना करें बात दूसरी है, याद है. क्या है कि हमें जब भी सुख मिले या दुख रहे हमको सम रहना चाहिए. हम क्या करते हैं? सुख मिलता है पार्टी, दुख मिला दरवाजा बंद, नो टॉकिंग. तो भगवान कहते हैं अगर आप अगर सम रहे तो एक तो ये उपाय है. अगर सम भी अगर रह पाए तो बोलते हैं इसका एक और बड़ा भारी लाभ है. क्या लाभ है? कि आप जो है आत्म तत्व जानने के लिए अधिकारी बन जाते हो. आत्मता तो जानने के अधिकारी बन जाते हो. तो कितना भारी उसके अंदर लाभ है. उपाय नंबर दो थोड़ा सा डिफिकल्ट है. अगर समझ में आ जाए तो बोलते हैं कि फिर तो कुछ कहने की बात नहीं है. हम लोगों ने देखा था कि ये हमें दुख आते कहां से हैं? अनात्म वस्तुओं से आते हैं. दुनिया में कितनी चीजें हैं? एक है, दूसरा अनात्मा. आत्मा क्या दुख दे सकता है? नहीं दे सकता. तो दुख कहां से आएगा? आत्मा से आएगा. अब वो कहते हैं अनात्मा है कि नहीं उसके ऊपर विचार करो. भगवान कहते हैं अनात्मा एट ऑल है कि नहीं उस पर विचार करो. अगर अनात्मा है ही नहीं तो फिर वो दुख कैसे देगा? दे सकता है क्या दुख? इसलिए वो कहते हैं ना सतो विद्यते भाव ना अभावो विद्यते सतः. उपाय नंबर दो कहते हैं कि ना असतो विद्यते भाव. असत का है ही नहीं, भगवान के हिसाब से अनात्मा की जितनी भी वस्तुएं हैं वो है ही नहीं। अगर वो है ही नहीं तो फिर दुख कहां से देगी। और दूसरा वो कहते हैं न अभावो विद्यते सतः, और जो सत चीज है उसका कभी अभाव नहीं होता, सत बराबर है। तो सत असत मिथ्या ये तीन वर्ड हम लोगों ने देखे थे। क्या क्या था सत का मतलब? जो तीनों काल में रहता है वो सत है। दुनिया की कोई ऐसी चीज बता सकते हैं जो तीनों काल में रहती है? कोई भी नहीं है, केवल आत्म तत्व तीनों काल में रहता है। असत क्या है? जो तीनों कालों में नहीं है। एग्जाम्पल क्या देंगे आप? हॉर्न ऑफ ए रैबिट, या बंध्या पुत्र, या स्काई फ्लावर, आकाश पुष्प। और मिथ्या किसको कहते हैं? जो सत भी नहीं है जो असत भी नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? उसके लिए हमारे शास्त्र में कहा वो मिथ्या है। तो सत का मतलब हुआ जो तीनों कालों में रहता है, असत का मतलब हुआ जो तीनों कालों में नहीं रहता है, और मिथ्या का मतलब हुआ जो एक काल में रहता है। तो अनात्म वस्तुएं जितनी की जितनी हैं वो एक काल में रहती हैं। अब इस एक काल में रहने वाले वस्तु को हटाए कैसे? थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से समझना। यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि यद विषया बुद्धि न व्यविचरती तत्सतः, जिस पदार्थ के विषय करने वाली बुद्धि बदलती नहीं वह पदार्थ सत है। सत किसको कहते हैं, असत किसको कहते हैं, शंकराचार्य जी उसका परिभाषा देते हैं। जिस विषय के बदले में आपकी बुद्धि बदलती रहती है वो सारी की सारी चीजें असत हैं। ये घड़ी है, ये किताब है, अभी हमारी बुद्धि बदल गई, घड़ी की जगह अब किताब आ गई, किताब के बदले बाद हम देखने लग गए, टेबल है, टेबल क्लॉथ है, ये जो है विषयों की बुद्धि बदलती रहती है। तो वो कहते हैं कि जहां पर यद विषया बुद्धि व्यभिचरती तद असत, यद विषया बुद्धि व्यभिचरती तद असत इति सद असत विभागे बुद्धि तंत्र स्थिते। यद विषया बुद्धि न व्यभिचरती वो क्या हुआ? वो सत। तो जैसे घड़ी है, पुस्तक है, घड़ी बदली पुस्तक बदली मगर है नहीं बदला, इसको पकड़ना है। तो जिस चीज के बारे में बुद्धि आपकी बदलती है तो हर अनात्म वस्तुओं के बारे में आपकी बुद्धि बदलती जाएगी, मगर हर अनात्म वस्तु के साथ में है लगा हुआ है, एग्जिस्टेंस लगा हुआ है, वो नहीं बदलता। हम लोगों ने यह भी देखा था, जैसे एक पेड़ है, पेड़ को काट दिया तो क्या बन गया? लॉग बन गया। तो हम क्या बोलेंगे? लॉग है, पेड़ गया, लॉग रह गया। लॉग को काट के हमने प्लैंक्स बना लिए, तब क्या हो गया? लॉग खत्म हो गया। अब हम क्या बोलेंगे? प्लैंक है। कहने का मतलब ये है जो है चलता जाता है, ये है नहीं खत्म होता है। बोलते ये जो है वो सत है, और जिसके बारे में वो चेंज होता रहता है, जो बदलता रहता है, वो बोलते असत है ही नहीं। मगर हमको दुनिया ठोस नजर आती है, कैसे आप कहते हो असत है? असत का मतलब क्या है? जो तीनों कालों में नहीं है उसको हम असत कहते हैं। फिर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था कि एक घट है, घट के जन्म के पहले घट नहीं था, घट टूटने के बाद में घट नहीं रहेगा। घट है क्या? एक रूप है, और उस रूप का हमने उसको एक नाम दे दिया। किसी को हम मिट्टी के बर्तन को, किसी को हम कप कहेंगे, किसी को प्लेट कहेंगे, किसी को ग्लास कहेंगे, किसी को चम्मच कहेंगे, डिफरेंट रूप उसके हमने डिफरेंट नाम दे दिए। हमने ये भी देखा था कि अब अगर घट को अगर आप उसको ठक ठक करोगे तो वो आवाज किसकी है, मिट्टी की है। उसको छुओगे घट को तो किसको छू रहे हो, मिट्टी को छू रहे हो। उसको सूंघोगे तो उसकी सुगंध किसकी है, मिट्टी की है। उसको अगर टेस्ट करोगे तो वो भी मिट्टी का ही टेस्ट है। अगर उस घट में से अगर हम मिट्टी निकाल दें तो क्या आप उसका नाम रूप दिखा पाओगे? और नाम रूप क्या है? नाम रूप पहले नहीं था, उसके बाद एक घट बना, उसके अंदर नाम रूप आ गया, घट टूट गया, नाम रूप चला गया। नाम रूप पहले नहीं था, नाम रूप बाद में नहीं है, नाम रूप क्या बीच में है? बीच में भी नहीं है, है तो मिट्टी। और हम लोगों ने एक उदाहरण देखा था, स्वप्न के पहले हम बैचलर थे, स्वप्न में हम विवाहित हो गए, स्वप्न के बाद हम जब निकले फिर हम बैचलर रहे। तब हम बताओ, स्वप्न के पहले हम अनमैरिड, बाद में अनमैरिड, तो बीच में क्या मैरिड थे? बीच में भी नहीं थे हम। तो अगर इस तरीके से आप इसको अगर समझोगे तो आपको समझ आएगा कि ये असत है ही नहीं। मगर इसको आपके मन में बैठने के लिए समय लगेगा। और एक नियम हमने बताया था, आप याद रखना, यद दृश्यम तद जड़म। जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है वो जड़ है। जो कुछ भी दुनिया में दिखाई पड़ता है वो सारा का सारा जड़ है। और जो जड़ है, जड़ किसको कहते हैं? जड़ उसको कहते हैं जो अपने आप को भी नहीं जानता और दूसरों को भी नहीं पहचानता। जैसे ये टेबल जड़ है, टेबल अपने आप को भी नहीं जानता कि मैं टेबल हूं, और इसके आसपास जो बैठे हैं उनको भी नहीं पहचानता है कि जड़ है। और हर जड़ वस्तु नाशवान है। यद दृश्यम तद जड़म, यद जड़म तद नश्वरम, वो नाशवान है। और जो नाशवान है वो सारा का सारा मिथ्या है। देखो मिथ्या तक तो आपको पकड़ में आ रहा है, सब आ रहा है ना? मिथ्या मतलब एक काल में है। अब वो कहते हैं जो मिथ्या है वो असत है, जो एक काल में है वो असत है, ना आगे था ना बाद में रहेगा, इसलिए बीच में भी नहीं है वो। इसको बैठाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर अगर भगवान कहते हैं और अगर हमारे गीता और शास्त्र वेद कहते हैं तो आप विश्वास कीजिए ये असत है। भगवान तो नहीं झूठ बोलेंगे, हमारी बुद्धि में नहीं आ सकता, वो बात दूसरी है। तो कहते हैं ये असत है। तो ठीक है, अगर सब अनित्य है तो नित्य क्या चीज है? फिर नित्य बताइए। आपने तो कह दिया सारा सारे के सारे जगत को आपने असत कर दिया, मिथ्या कर दिया, है ही नहीं। तो फिर नित्य क्या चीज है? तो 17वें श्लोक में कहते हैं,
अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, येन सर्वमिदं ततम्, विनाशं वव्वयस्यास्य, विनाशं वव्वयस्यास्य, न कश्चित् कर्तुमर्हति, न कश्चित् कर्तुमर्हति, अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, विनाशमव्ययस्यास्य, न कश्चित् कर्तुमर्हति।
शंकराचार्य जी लिखते हैं, जो निस्संदेह सत है और सदैव रहता है वो क्या है? तो इसके ऊपर ये श्लोक जो है, भगवान कहते हैं अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। उसको अविनाशी समझो जिसके द्वारा ये सारा का सारा जगत व्याप्त है। ततम का मतलब व्याप्त है, जो कुछ भी आपको नजर आता है सर्वम इदम 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 करके जो भी नजर आता है, इदम मतलब दिस 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 टेबल दिस क्लॉथ दिस बेडशीट वो आपका आर्म चेयर, जो कुछ भी आपको दृश्य नजर आता है ये सब का सब जो है व्याप्त है, जिससे वो है सत। अब सबसे पहले आप कहोगे तो हमको तो बताया गया है कि सारी की सारी दुनिया पिंड और ब्रह्मांड पांच महाभूत से बना है, ये तो मालूम है ना आपको। पांच महाभूत क्या क्या है? हाँ, आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। हमारे में भी पांच तत्व हैं और दुनिया के ब्रह्मांड में 14 लोक में, केवल इसमें हमारे इस लोक में नहीं, ऊपर के 7 लोक, नीचे के 7 लोक, सारे के सारे 7 लोक जो हैं वो पंच महाभूत से बने हुए हैं। तो आप सबसे पहले कहोगे तो ये तो सारा का सारा संसार जो है, सारा का सारा जगत जो है वो पंच महाभूतों से व्याप्त है। ठीक है, और थोड़ा भीतर चलते हैं। इस पंच महाभूत को जो है मन अपनी इंद्रियों के द्वारा व्याप्त करता है। ये कैसे हमको समझ में आते हैं कि ये सोफा है, ये चेयर है, यहाँ आशीष जी बैठे हुए हैं, यहाँ अम्मा बैठी हुई हैं, कौन बता रहा है? तो ये मन जो है हमारा आँख के जरिए जाके सबको देख के उसको व्याप्त करता है, उस रूप को व्याप्त करता है। रूप को व्याप्त करने के बाद में रूप जो है ये आंख ले जाके बोल देगी कि ये रूप यहां बैठा हुआ है, फिर बुद्धि बताएगी कि ये रूप जो है सूबी जी बैठी हैं, ये रूप ये व्यक्ति बैठा हुआ है, इस किस्म से मन बताता है। तो पंच महाभूत के बाद अब मन व्याप्त करता है, तो आप क्या कहोगे कि मन से सारी चीजें व्याप्त हैं? मगर मन भी तो पंच महाभूत का ही बना हुआ है, वो तो इनर्ट है, वो तो जड़ है। तो मन को जो प्रकाशित करता है उससे ये सारा का सारा व्याप्त है। एक दूसरे तरीके से हम उसको और समझ सकते हैं कि एक तो चीज होती है इदम इदम, जैसे यहां पर आया ना सर्वम इदम 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 कहते हैं ना, इदम मतलब दिस 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 दिस, जो कुछ भी नजर आता है उसको हम इदम कहते हैं संस्कृत में। तो ये सारा का सारा जगत जो है वो एक तत्व से व्याप्त है। वो तत्व क्या है? बोले अहम। इदम को छोड़ के दूसरी चीज क्या होती है? अहम। तो यहां जो हम इस अहम की बात कर रहे हैं वो अहम होता है शुद्ध चैतन्य, उसको हम आत्मा कहते हैं, उसको ब्रह्मन कहते हैं। तो सारा का सारा जगत किससे व्याप्त है? उस शुद्ध चैतन्य से, उस आत्मा से व्याप्त है। और वो आत्मा जो है वो अविनाशी है। अब एक प्रश्न आ सकता है कि आप लोग कहोगे कि सारा का सारा जगत तो आकाश से व्याप्त है, सब कुछ तो आकाश के अंदर ही है, तो क्या फिर क्या आकाश अविनाशी है क्या? आकाश भी महाभूत है, मगर हमको तो प्रूफ करना है ना कि आकाश भी विनाशी है। कैसे प्रूव होगा? देखो, जागृत अवस्था का आकाश एक दूसरा है, जागृत अवस्था का आकाश एक दूसरा है, वो जागृत अवस्था में उपलब्ध है। स्वप्न का आकाश क्या वही है कि दूसरा है? दूसरा है, स्वप्न का आकाश दूसरा है। जब आप स्वप्न देखते हो तो उस टाइम में कहते हैं कि जिस जगह पर वो स्वप्न देखा जाता है वो नाड़ी इतनी संकीर्ण है कि उस जगह के अंदर में हाथी या पहाड़ नहीं घुस सकता। वैसे भी आपके इस शरीर के अंदर हाथी नहीं घुस सकता है, मगर जिस जगह वो दिखाई पड़ता है वो स्वप्न, वो कहते हैं इतनी पतली जगह, इतनी संकीर्ण जगह है कि वहां पर हाथी, नदियां, पेड़ पौधे कुछ नहीं घुस सकते, असंभव है। तो वो आकाश दूसरा है, तो इसका मतलब आकाश दो हो गए, एक जागृत अवस्था का आकाश और दूसरा स्वप्न का। अच्छा, सुसुप्ति के अंदर कोई आकाश नहीं है? आप जब सोए रहते हो तब कोई आकाश रहता है? कोई स्पेस नहीं है। तो ये स्पेस जो है आने जाने वाली है, क्योंकि आने जाने वाली है इसलिए ये अविनाशी नहीं हो सकती, ये विनाशशील है। बहुत अच्छा। तो सत केवल एक चीज है जिससे सारा का सारा जगत व्याप्त है। शंकराचार्य जी कहते हैं, नष्ट होना जिसका स्वभाव है, नष्ट न होना जिसका स्वभाव है वह अविनाशी है। जो कभी नष्ट नहीं होता वो अविनाशी है। उसके बाद कहते हैं, उसको तू अविनाशी जान समझ किसको, जिस सद सप्तवाच्य ब्रह्म से यह आकाश सहित संपूर्ण विश्व आकाश से घटादि के सदृश प्राप्त है। कहते हैं कि ये जो ब्रह्म है ना, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिससे सब व्याप्त है, वो ब्रह्म जो है वो आकाश को भी व्याप्त करता है और वो आकाश घट आदि को व्याप्त करता है। ये जितने भी वस्तुएं हैं इनके, इनको सबको किसके अंदर रखा गया है? आकाश का मतलब अवकाश, किसमें स्पेस किसमें है? तो स्पेस के अंदर ये सारी चीजें हैं। स्पेस किसमें है? स्पेस किसमें है? बोलते हैं स्पेस उसमें है, उस ब्रह्मन के अंदर है। वैसे भी हम लोगों ने देखा है ना, आकाश कहां से आया? आकाश माया से आया। माया किसका पावर है? ब्रह्मन का है। तो ब्रह्मन से ही सब कुछ आया है। तो ब्रह्मन से सब कुछ आच्छादित है, ब्रह्मन से सब कुछ कवर्ड है। ऐसा कवर्ड नहीं समझ लेना कि जैसे कारपेट स्प्रेड कर दिया, ऐसा कवर्ड नहीं है। या ऐसा नहीं समझ लेना कि ये पानी जो है इसके अंदर गिलास के अंदर है या बोतल के अंदर है, बोतल कवर कर रही है पानी को, ऐसा नहीं है। कैसे कवर करता है वो? वो ब्रह्मन सारे जगत को कैसे कवर करता है? ऐसा नहीं है कि लिफाफे में जैसे चिट्ठी डालते हैं, चिट्ठी को लिफाफे ने कवर कर दिया, ऐसा नहीं है। कैसा है बताओ? आप, हमने बहुत बार बताया है कैसा है। इट इज कवरिंग बाय प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस, इजनेस 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 सब जगह है। जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है वो इजनेस के कारण दिखाई पड़ रहा है। इजनेस है सबस्ट्रेटम में, इस वास्ते आपको दिखाई पड़ रहा है। ये इजनेस नहीं होता ना तो दिखाई नहीं पड़ता। तो वो जो ब्रह्मन है जिसको हम सच्चित आनंद कहते हैं, सत का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। सो ही कवर्स द होल वर्ल्ड एज ए प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस। है पना उस ब्रह्म का आधार है। इस अव्यय का अर्थात जिसका व्यय नहीं होता, जो घटता बढ़ता नहीं है, उसको अव्यय कहते हैं। अव्यय की परिभाषा, अव्यय किसको कहते हैं? जो कभी घटता भी नहीं है बढ़ता भी नहीं है। दुनिया की हर चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, उनके बदलाव होता रहता है, उनमें विकार होता रहता है, बढ़ता रहता है, कभी घटता रहता है। हमारा शरीर 7 पाउंड से 170 पाउंड, फिर बूढ़े हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 30 पाउंड पर आ जाएगा। घटता बढ़ता रहता है। उसका विनाश अभाव करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है, और उसका विनाश, उस सत का विनाश, उस इजनेस का विनाश कोई नहीं कर सकता। हमने देखा था ना अभी, एक पेड़ है, पेड़ को काट दिया, फिर क्या बन गया? लॉक बन गया। है पना चलता रहा, आप उस है पने को कभी नहीं काट सकते, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यह सत नामक ब्रह्म अवयव रहित होने के कारण देहादि के तरह अपने स्वरूप से नष्ट नहीं होता, अर्थात इसका व्यय नहीं होता। तो दो रीजन बताते हैं क्यों नहीं नष्ट होता। एक तो बोलते हैं इसका रूप, उसका स्वरूप कुछ नहीं है, और जितनी भी चीजें रूप वाली हैं उसमें हम क्या देखते हैं? जितने के भी आकार हैं, रूप हैं, उन सब के अंदर हम व्यय देखते हैं। जैसे शरीर है, शरीर मर गया, उसके बाद में वो क्या होता है? डीकम्पोज हो जाता है ना, अपने आप जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद हमने दवाई वगैरह में एक्सपायरी डेट है वो भी खत्म हो जाती है, मकान वगैरह आज है 100 साल के बाद में ये मकान खंडहर हो जाएगा, ये अपने आप व्यय होता रहता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका आकार है, क्योंकि इसका आकार है, इस वास्ते इसमें विकार होते रहेंगे। और दूसरी बात कि इन सब में अवयव हैं, अंग हैं, अंग है मतलब इस मकान में दरवाजे हैं, खिड़की हैं, इससे जो चीजें ये इसके अंग हैं, ये शरीर में अंग हैं, हाथ हैं, पांव हैं, जिस जिस चीजों में अंग हैं वो सारी की सारी चीजें नाशवान हैं। कार में भी बहुत अवयव हैं, बहुत पार्ट्स हैं, वो भी खराब होने वाली है। मगर ब्रह्मन बोलते हैं, ब्रह्मन निराकार है, उसका आकार नहीं है और निरअवयव है। निरअवयव मतलब उसका कोई पार्ट्स नहीं है, कोई लिम्ब्स नहीं है। आगे हमने कहाँ पढ़ा था, जिन्होंने ईशावास उपनिषद पढ़ा वो बताएं, ब्रह्मन का न तो स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है और न ही कारण शरीर है। अवयव किस में है? स्थूल शरीर में है। इसलिए ब्रह्मन के पास में कोई अवयव नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, इसलिए उसमें विकार नहीं है, उसका नाश नहीं होता। इसके बाद शंकराचार्य जी कहते हैं, तथा इसका कोई निजी पदार्थ नहीं है होने के कारण निजी पदार्थों के नाश से भी इसका नाश नहीं होता। जैसे देवदत्त अपने धन की हानि से हानि वाला होता है, ऐसा ब्रह्म नहीं होता। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक आदमी अमीर था, उसके पास बहुत धन था, अब उसका धन चला गया, क्या बोलेंगे? उसका नाश हो गया। किसी के पास में पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, पोस्ट चली गई या वो बेकार हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? उसका नाश हो गया। तो बोलते हैं आत्मा में वैसा नहीं है, आत्मा में कोई पोस्ट नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए भी उसका नहीं होता। तो दो किस्म के नाश होते हैं, एक तो हानि हो जाने से, वस्तु की हानि, हमारे पास में कोई पोजीशन है वो चला गया, तो बोलते हैं हम नाश हो गया। दूसरा जिसका आकार है उसका नाश होगा, ब्रह्मन निराकार है। जिसके अंदर अवयव हैं, जिसके अंदर पार्ट्स हैं, उनका सबका नाश होगा, ब्रह्मन के पार्ट्स नहीं है। तो इंद्र का नाश होगा क्या? इंद्र का नाश होगा? हाँ, क्योंकि कुर्सी है, पोस्ट है, पोस्ट आप भी ले सकते हो, उसके लिए उसका तरीका बताया गया क्या करना है आपको, उतने अगर आप यज्ञ कर दो तो आपको भी इंद्र का पोस्ट मिल जाएगा, मगर आप भी वहां डरते रहोगे, कोई दूसरा फिर उतने यज्ञ कर लेगा तो उसकी कुर्सी हो जाएगी। अच्छा, कृष्ण के जाने के बाद अर्जुन भी निस्तेज हो गया था, सब जो है ब्रह्मन के ऊपर है, हमारे जितने भी ये अवयव काम करते हैं ना, जितने भी कुछ काम करते हैं वो ब्रह्मन के कारण ही करते हैं। ये किसी ने रमन महर्षि से पूछा, क्या आप आत्मा को दिखा सकते हो? बोला हाँ दिखा सकते हैं। बोले जिसके कारण ये उंगली हिल रही है वो आत्मा है, जिसके कारण ये उंगली हिल रही है वो आत्मा है। जब वो तत्व नहीं रहेगा ये आपकी उंगली हिलेगी नहीं। उसके बाद कहते हैं कि न कश्चित आत्मनम विनाश ये तुम शक्नोति ईश्वर भी, इस आत्मा का विनाश ईश्वर भी नहीं कर सकता। हमने तो सुना था ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, तो वो क्या आत्मा का विनाश नहीं कर सकता? बोले नहीं, वो आत्मा का विनाश नहीं कर सकता। जीव तो करता है बहुत कुछ, बोलता हाँ आप जीव बहुत कुछ कर सकते हो, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम कर सकते हो, करतुम हम सत्संग में आएंगे आ सकते हो, अकर्तुम नहीं आएंगे सत्संग में वो भी आपके अधिकार में है, अन्यथा करतुम हम जाएंगे क्लब में आपकी मर्जी है जाओ, जीव यह कर सकता है। मगर ईश्वर आत्म तत्व का नाश नहीं कर सकता। क्यों नहीं नाश कर सकता? तो उसके अंदर कहते हैं, आत्मा ही ब्रह्म स्वात्मनि च क्रिया विरोधात्। आत्मा ही तो ब्रह्म है, ईश्वर क्या है? बोले ईश्वर भी ब्रह्म है। अरे ईश्वर भी ब्रह्म है, हम लोगों ने तत्वबोध में पढ़ा था ना, जीव इज इक्वल टू ईश्वर इज इक्वल टू ब्रह्मन। याद है? नहीं, ब्रह्मन प्लस सत्व प्रधान उपाधि होने से ईश्वर हो जाता है, ब्रह्मन प्लस रजस तमस प्रधान उपाधि होने से जीव हो जाता है। तो जीव और ब्रह्म में फर्क क्या है? उपाधि का फर्क है। ब्रह्मन हमारे में भी है, भगवान कृष्ण में भी है, ईश्वर में भी है, अब ब्रह्मन में भी है। तो ब्रह्मन की दृष्टि से हम सब ब्रह्मन है, मगर ब्रह्मन प्लस उपाधि हम सब डिफरेंट है। आप लोग जितने लोग बैठे हुए ना, ब्रह्मन प्लस उपाधि, इनकी उपाधि डिफरेंट, आपकी डिफरेंट, उनकी डिफरेंट, उनकी डिफरेंट, मगर ब्रह्मन सबके भीतर में एक है। विथ उपाधि हम सब डिफरेंट है। उसी तरह भगवान राम भगवान कृष्ण क्या है? उनकी उपाधि डिफरेंट है, मगर भीतर में बोले सेम आत्म तत्व है। तो कहते हैं कि आत्मा ही ब्रह्म स्वात्मनि च क्रिया विरोधात्। आप अपने आप में क्रिया नहीं कर सकते। कैसे समझे? अपने आप में क्रिया नहीं कर सकते, आत्मा आत्मा को नहीं मार सकता। मगर हमने तो सुना आत्महत्या करते हैं लोगों को, उपाधि की हत्या होती है, आत्मा की हत्या नहीं होती, उपाधि की हत्या होती है। तो आत्मा में आत्मा क्रिया नहीं होता है, तो वो कैसे समझे? अच्छा बताओ, आप अपने ऊपर सिर पर बैठ सकते हो? आप क्रिया करके दिखाओ। आप अपनी आंख को अपने आप देख सकते हो विदाउट मिरर? दिखाओ करके। नहीं कर सकते ना। इसी तरह से ईश्वर जो है वो कौन है? वो ब्रह्मन ही है, वो आत्मा ही है। तो वो आत्मा का नाश कैसे कर देगा? अगर मैं अपने आप अपने शरीर पर नहीं बैठ सकता, मैं अपनी आंख को बिना मिरर के नहीं देख सकता, अपने ऊपर क्रिया नहीं कर सकता, तो आत्मा कैसे क्रिया कर लेगी? तो आत्मा भी क्रिया नहीं कर सकती। तो आत्मा तो अविनाशी है, तो फिर विनाश किसका होता है ये भी बताओ ना। तो विनाश किसमें होता है? तो ये बताते हैं फिर।
अंतवंतई में देहा, अंतवंतई में देहा, नित्यस्योक्ता शरीरिनः, नित्यस्योक्ता शरीरिनः, अनाशीनो प्रमेयस्य, अनाशीनो प्रमेयस्य, तस्मात् युद्धस्व भारत, तस्मात् युद्धस्व भारत, अंतवंत इमे देहा, नित्यस्योक्ता शरीरिनः, अनाशीनो प्रमेयस्य, तस्मात् युद्धस्व भारत।
अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिनः। बोले ये देह अंतवान है। अंतवंत इमे देहा, ये जितने भी देह खड़े हुए हैं ना, ये सारे के सारे देह जो हैं, जितने भी यहां बैठे हुए हैं, सब के देह अंतवान हैं। जैसे धनवान होता है ना, धनवान गुणवान, बोले वैसे ये शरीर क्या है? अंतवान है। ये सबके शरीर अंत होंगे। और नित्य उक्ता शरीर न, शरीर न, जो शरीरी है, शरीर और शरीरी दो दूसरी चीजें हैं, देह और देही दो डिफरेंट चीजें हैं। जो शरीरी इसके अंदर है, जो आत्मा इसके अंदर है, वो क्या है? वो कहते हैं नित्य है, वो नहीं मरता। नित्य से उक्ता शरीर न, अनाशिनो, इसका नाश नहीं होता, अप्रमेयस्य, और उसको आप जो है माप भी नहीं सकते, उसको देख भी नहीं सकते आत्मा के। तस्मात युद्धस्य भारत है, हे अर्जुन, इसलिए तुम युद्ध करो। तो यहां पर एक चीज है सत और दूसरी है असत। देह जितने हैं वो क्या है? असत है। और उसके अंदर जो देही है, जो शरीरी है, जो आत्मा है, वो क्या है? वो सत है। तो एक सत है, दूसरा असत है। और इस देही का और इस शरीरी का नाश नहीं होता। हमने उन्होंने देखा ना, है पने का कभी नाश नहीं होता, इजनेस का कभी नाश नहीं होगा। अंतवंत में देहा, ये देह कैसे है? बोले जैसे बल्ब है। और आत्मा क्या है? बोले इलेक्ट्रिसिटी है। बल्ब खराब हो जाता है वैसे देह खराब हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है, उसी तरह से आत्मन। तो हम लोग क्या है सब? बोले बल्ब की तरह इंस्ट्रूमेंट है सब। ये उपाधि जो है वो खराब होती है, मगर उसमें उपाधि के अंदर जो जीवन देने वाला है वो अमर है। इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। क्यों युद्ध करो? क्योंकि आत्मा नित्य है। अर्जुन क्या सोच रहा था? अर्जुन सोच रहा था इतने लोगों को मैं मारूंगा। भगवान कहते तुम नहीं मारोगे, ये वैसे भी मर जाएंगे, सब मरेंगे। क्यों? अंतवंत ही में ध्यान, क्योंकि ये सारे के सारे दे अंत वाले हैं, ये तो मरेंगे। तुम मारो या नहीं मारो, ये तो सारे के सारे मरेंगे। बहुत अच्छा। तस्मात युद्धस्य भारत है अर्जुन, इसलिए तुम युद्ध करो। देह वर्ड जो है ना, दह धातु से आता है। दह धातु मतलब जिसको दहन करते हैं, जिसमें हम जला देते हैं, दह धातु। और उस एक और धातु से देह आता है, उसको कहते हैं दीह। दीह का मतलब उपचय, जिसमें वृद्धि हो, उसको हम देह कहते हैं। देह में वृद्धि हमने होते देखी है, और देह को हमने जलाते हुए भी देखा है, क्रिमेट करते हुए भी देखा हुआ है, इसलिए देह। हमारे यहाँ ना एक एक वर्ड जो है उसका रूट जो होता है ना, वो संस्कृत से आता है, और उसके एक अलग अलग मीनिंग है, और उस मीनिंग के हिसाब से वो बन के आता है। तो हर वर्ड का एक रूट है, और रूट का मीनिंग पकड़ने से ही आपको जो है इसका भी मीनिंग पता लग जाएगा। तो शरीर में परिवर्तन है, आत्मा में परिवर्तन नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं? जो परिवर्तनशील है उसको प्रधानता देते हैं, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं पड़ता, उसको हम कोई प्रधानता ही नहीं देते हैं। जो दिखाई पड़ रहा है उसी को हम प्रधानता देते हैं, ये दिखाई पड़ रहा है इसको हम प्रधानता देते हैं। और इसके देने के कारण क्या हुआ? इसके अंदर आसक्ति हो गई। मगर आत्मा को अगर जान लें और इसके गुण जान लें कि ये अंतवंत है, तो क्या होगा? थोड़ा सा अटैचमेंट कम हो जाएगा, अटैचमेंट कम होगा, अंतवंत जान लिया। और जब आपको ये पता लग जाएगा कि संसार की सारी चीजें अनात्मा हैं, सारी की सारी चीजें टूटने वाली हैं, नाश होने वाली हैं, तो अब आपके घर में जो चाइनीज क्रॉकरी पड़ी हुई है, सेट ला के सजा के रखा हुआ है, अब किसी दिन उसको साफ करने के टाइम में अगर टूट जाएगा, निश्चित है आपको उतना आप दुख नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ये पता लग गया है कि ये सारी की सारी चीजें टूटने वाली हैं, नाश होने वाली हैं। यहां शंकराचार्य जी कहते हैं जिनका अंत होता है, विनाश होता है, वे सब अंत वाले हैं। अंतवंत मतलब जिनका नाश होता है, जिनका विनाश होता है, वो सारे के सारे अंत वाले हैं। जैसे मृग तृष्णा आदि में रहने वाले जल विषयक सद्बुद्धि प्रमाण द्वारा निरूपण की जाने पर बाद में विच्छिन्न हो जाती है, वही उसका अंत है। वैसे ही ये सब शरीर अंतवान है, तथा स्वप्न और माया शरीर आदि के भांति भी ये सब शरीर अंत वाले हैं। शंकराचार्य जी ने बहुत बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा कि जैसे मृग मरीचिका के अंदर आपको क्या नजर आता है? बालू है, ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ती है, आप कुछ दूर में खड़े हो, आपको लगता है वहां पानी है, आप जो है उस पानी को पीने के लिए दौड़ते हो। मगर जब आपको ज्ञान हो जाता है कि वहां पानी नहीं है, ये केवल अपीयरेंस है, केवल नजर ऐसा आता है, एक बार ज्ञान हो जाने के बाद में फिर क्या दौड़ोगे उस पानी पीने के लिए? नहीं दौड़ोगे। बोले ठीक उसी तरह ये शरीर जो है स्वप्न और माया के शरीर आदि की भांति ये भी सारे शरीर अंत वाले हैं, ये मानने में थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी, मगर शंकराचार्य जी अगर कहते हैं तो ये सत्य है। क्या सत्य है? कि ये शरीर भी स्वप्न की तरह है, माया की तरह है, ये असत है ही नहीं। बहुत अच्छा। कैसे? बोले रज्जू के ऊपर सर्प है, रज्जू रस्सी के ऊपर में आपने सांप देखा। क्यों देखा? क्योंकि शाम का टाइम था, हमको नजर नहीं ठीक से आ रहा था, रास्ते पर रस्सी पड़ी हुई थी, हमने सोचा ये तो सांप पड़ा हुआ है। मगर जैसे ही आपको प्रकाश के अंदर ज्ञान हुआ, फिर क्या होता है? फिर क्या आपको सांप का भय होता है? क्या उस सांप को मारने की दरकार पड़ती है? क्या कोई दरकार नहीं पड़ती? तो सांप को मारो नहीं, शरीर को भी मारो नहीं। आपको तो ज्ञान चाहिए ना, दो चीज का आपको ज्ञान चाहिए, एक आत्मा का और दूसरा अनात्मा का। बिना इस ज्ञान के ही हम इस संसार में काम करते जा रहे हैं। अब अनात्मा का ज्ञान आपको हो रहा है थोड़ा थोड़ा, कि ये सारी की सारी चीजें विनाशील हैं, विकारी हैं, सब में चेंज आता है, और आत्मा आत्मा नित्य है। तो जैसे जैसे ये ज्ञान होता जाएगा, वैसे वैसे आप समझते जाओगे। तो जो आदमी रज्जू के ऊपर सर्प देखता है, रस्सी के ऊपर सर्प देखता है, जब उसको ज्ञान हो जाता है, उसके बाद में फिर उसको सांप का दुख नहीं होता। उसी तरीके से जिस समय आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तो शरीर आदि के दुख जो आपको दिखते हैं वो फिर और नहीं होंगे। तो शरीर को मारना नहीं है, जैसे उस सांप को मारना नहीं है, रज्जू के ऊपर जो सांप है उसको लाठी लेकर मारने से कुछ नहीं होगा, नहीं भागेगा। कैसे भागेगा? एकमात्र ज्ञान से जाएगा वो। जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि वो तो सांप नहीं है, केवल रस्सी है, उसी तरीके से हमको अपने देह को मारना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसका नाश नहीं करना है, केवल हमें ज्ञान चाहिए। अगर आपने गलती से बोला कि नहीं शरीर को मार देते हैं, अब इस जिंदगी के अंदर कुछ बचा नहीं है, दुखी दुख है, परेशान हो गए हैं, देखो वो आदमी भी सुख चाहता है, मर के सुखी होना चाहता है, ऐसे ही है ना, दुख से परेशान क्यों आत्महत्या कर रहा है? किसी के पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, तो क्या करता है? वो दुखी हो गया बहुत। कैसे होगा? बोल मर के सुखी हो जाएंगे। और उस आदमी को जिसके पास धन नहीं है, उसको धन दे दो, वो अभी उतर आएगा, बोला नहीं नहीं मरना नहीं है, अब हम सुखी हो गए। तो मरता भी आदमी सुखी के लिए, सुख के लिए। मगर ऐसे आदमी जो आत्महत्या करते हैं, उनको कहते हैं कि वो पिशाच की योनि में आते हैं। पिशाच की योनि मतलब वो भटकते रहेंगे, उनको शरीर नहीं मिलेगा दूसरा। क्यों नहीं दूसरा शरीर मिलेगा? क्योंकि उनका प्रारब्ध नहीं खत्म हुआ। क्या प्रारब्ध था? आपको 100 साल जीना था, आपको सुख दुख लेने थे, आपको उसके हिसाब से भगवान ने आपको ये उपाधि दी ना, कि आपके सुख दुख बराबर थे और आपको 100 साल तक सुख दुख आपको भोगना था। आपने 60 साल में कहा कि नहीं अब और हमसे सहन नहीं होता, हमको मरना है, आपने शरीर को नष्ट कर दिया। अब 40 साल क्या करोगे? भगवान आपको दूसरा शरीर नहीं देंगे, पड़े रहो 40 साल तक वहां, और यातना वहां पर। ये आती है कथा धुंधकारी की, कथा भागवत के महात्म्य में आती है धुंधकारी। फिर उसको भागवत की कथा सुनाई गई, उसके बाद में उसकी मुक्ति हुई। बहुत अच्छा। तो ये शरीर जो है स्वप्न और माया की तरह है, इसलिए इस अविनाशी अप्रमेय शरीरधारी नित्य आत्मा के ये सब शरीर विवेकी पुरुष द्वारा अंत वाले कहे गए, ये अभिप्राय है। उक्ताहा, उक्ताहा मतलब किसने कहा ये? बोले विवेकी पुरुष ने कहा है, जिसने विवेक किया। क्या विवेक किया? आत्मा और अनात्मा का विवेक किया। आत्मा और अनात्मा का विवेक करके आपको क्या मिला? कि अनात्मा वस्तुएं सबकी सब परिवर्तनशील है। ये तो आप मानते हो ना, ये तो आपका अनुभव है, आपका शरीर में परिवर्तन हुआ है, आपके जितने भी आसपास की चीजें हैं सब में परिवर्तन होता है। तो विवेकी लोगों ने ऐसा कहा। तो नित्य और अविनाशी यह कहना पुनरुक्ति नहीं है। भगवान एक ही बार नित्य कहते हैं और फिर अविनाशी भी कहते हैं, अनाशीनो जिसका नाश नहीं होता। देखो शंकराचार्य जी कहते हैं कि दो बार क्यों कहा? क्या मतलब है इसके पीछे? एक चीज को समझाने के लिए दो वर्ड क्यों यूज किए गए? तो यहां कहते हैं, जैसे शरीर जलकर भस्मीभूत हुआ अदृश्य होकर नष्ट हो गया कहलाता है, और रोगादि से युक्त हुआ विपरीत परिणाम को प्राप्त होकर विद्यमान रहता हुआ भी नष्ट हो गया होता है। दो किस्म से कहते हैं ना लोग नष्ट हो गया, एक तो आदमी मर गया, अब दूसरा जो है बहुत से रोगों से जड़ित है तो उसका शरीर भी नष्ट हो गया कहते हैं ना, अब उसका शरीर नहीं है, वो काम करने लायक नहीं है, शरीर तो नष्ट ही कहेंगे ना उसको। तो बोलते हैं दो किस्म के नष्ट होते हैं, दो किस्म से ये होते हैं, मगर आत्मा के अंदर बोला ऐसा नहीं है, आत्मा के अंदर इस किस्म का नहीं है। यहां पर हमारे संसार के अंदर पांच किस्म के लोग बराबर मृत कहे जाते हैं, सेकेंडरी डेथ उसको कहते हैं। पांच किस्म के लोग हम लोग समझते हैं कि ये मरे हुए हैं। एक तो व्याधि युक्त, किसी को ऐसी व्याधि लग गई जिसका इलाज कुछ नहीं है, वैसे लोग मृत के समान समझे जाते हैं। दूसरा दरिद्र, जिसके पास धन नहीं है उसको भी हम लोग मृत के समान समझते हैं। मूर्ख, मूर्ख जिसके पास ज्ञान नहीं है, पॉवर्टी ऑफ नॉलेज, ज्ञान नहीं है, वो भी मृत के समान है। प्रवासी, प्रवासी जो बराबर घूमते रहते हैं, ट्रैवलिंग ऑलवेज, प्रवासी मृत के समान है, मिलते ही नहीं है। हमारे स्वामी जी चिन्मय मिशन वाले लोग कहा करते हैं, हम लोग को तो बहुत सेंटर है ना, तो बोले जितने भी वो सेक्रेटरी ट्रेजर जो हैं, प्रेसिडेंट जो हैं, वो तो सारे के सारे सेवक हैं ना, अनपेड सेवक हैं, मगर घूमते रहते हैं सब, नॉट अवेलेबल फॉर द वर्क, तो उससे क्या होता है? बोले फिर मिशन का काम बढ़ता नहीं है, ग्रोथ नहीं होता है। प्रवासी ऐसे ही है, घूमते रहेंगे, जहां पर दरकार है वहां मिलेंगे नहीं, प्रवासी। नित्य सेवक, जो स्लेव है वो अपनी मर्जी से नहीं चल सकता, उसको अपने मालिक के अंडर में रहना पड़ता है। आजकल तो खैर स्लेवरी नहीं है, मगर आगे स्लेवरी थी, जिसको क्या कहते थे, कृत दास, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। एक बार आपने दे दिया, लोग खरीद लेते थे, बच्चों को खरीद लेते थे, माँ बाप को 5,000-10,000 दे दिया, ये मेरा नौकर, अब वो सारे जीवन तक वहां नौकर रहेगा। परतंत्र, बोले ये सारे के सारे पांच किस्म के लोग ये सारे के सारे मृत समझे जाते हैं। तो अविनाशी और नित्य, इन दो विशेषणों के यह अभिप्राय है कि इस आत्मा दोनों प्रकार के ही नाश से संबंध नहीं रखता। तो एक देह का नाश हो गया मरने के बाद में, दूसरा देह का नाश किसी रोग के कारण, जीवित है मगर हम कहेंगे उसका देह खराब हो गया, नाश हो गया। तो आत्मा के अंदर बोलते हैं ये दोनों किस्म के नाश नहीं हो सकते, दोनों किस्म के नाश नहीं हो सकते, मतलब जैसे देह मर जाता है वैसे आत्मा मरता नहीं। क्यों नहीं मरता है, क्यों नहीं आत्मा मरता है? क्योंकि आत्मा के पास देह नहीं है, क्योंकि आत्मा के पास देह नहीं है, चूंकि देह नहीं है इस वास्ते रोग नहीं है, इसलिए देह का मरना या देह में रोग हो जाना आत्मा में अप्लाई नहीं करता, इसलिए आत्मा के अंदर ये दोनों किस्म के नहीं हो सकते। ऐसे नहीं कहा जाता कि आत्मा का नियतत्व भी पृथ्वी आदि भूतों के सदृश है, आत्मा पृथ्वी की तरह नित्य नहीं है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी विकारशील है, नष्ट होने वाली है, तो उसका भी उसके साथ में कंपेरिजन नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, इसके बाद में कहते हैं कि मगर हमने तो सुना है कि आत्मा को प्रत्यक्ष तो नहीं जान सकते, प्रत्यक्ष मतलब प्रति अक्ष, आंख से नहीं देख सकते, और उसको परोक्ष भी नहीं देख सकते, पर अक्ष हम अपनी आंख से भी नहीं देख सकते। अगर हम अपनी आंख से देखते हैं तो उसको हम वर्ड क्या यूज करते हैं, प्रत्यक्ष, मैं इसको पुस्तक को प्रत्यक्ष देख रहा हूं। और कोई आके कहे आपने ताजमहल देखा है, मैं अभी देख के आया हूं, तो क्या परोक्ष, उसने देखा है, मगर वो परोक्ष वस्तु कभी प्रत्यक्ष हो सकती है। अगर मैं ताजमहल देखने चला जाऊं तो परोक्ष वस्तु जो है, परोक्ष ज्ञान जो है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है। तो अपरोक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? आत्मा अपरोक्ष है। अपरोक्ष का मतलब न तो वो अपनी आंखों से देखा जा सकता है, न दूसरों की आंखों से देखा जा सकता है। कहने का मतलब कभी वो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। आत्मा कभी भी विषय नहीं बन सकता कि हमने ये देख लिया, कि दूसरे ने, किसी ने देख लिया। आप आत्मा बन सकते हो। और हम लोग का क्या एग्जाम्पल था मां? अजय कुमार। अब आपसे किसी ने पूछे, आप अजय कुमार को जानते हो? आप बोलो कि हमने सुना ही नहीं है कोई ऐसा नाम। तो कोई कहेगा, हाँ एक हमारे पड़ोसी में अजय कुमार रहता है, उसके दो बच्चे हैं, हमको हरिओम करता है। आप इतना जानते हो। और उसका जिगरी दोस्त बोलेगा, मेरे साथ में पढ़ा था, उसकी शादी में हम गए थे, उसके बाद उसके बच्चे हुए, हम तो उसको इतना जानते हैं। मगर वो भी दोस्त पूरा नहीं जानता है। उसका लंगोटिया यार हो सकता है, मगर वो फिर भी पूरा नहीं जान सकता। और रेडियोलॉजिस्ट के पास जाके पूछो, आपने अजय कुमार का फोटो उठाया था, उसका क्या एक्सरे किया था? बोला, मैं तो उसका इन आउट पूरा जानता हूँ। अब आप अजय कुमार से पूछो, अजय कुमार, तुम अजय कुमार को जानते हो? अजय कुमार क्या कहेगा? मैं अजय कुमार हूं। वहां फिर वो डिग्री नहीं आती है कि मैं इतना जानता हूं अजय कुमार को, इतना जानता हूं। अजय कुमार ऐसा कहेगा, मैं अजय कुमार को 40% जानता हूं, 100% जानता हूं? ऐसा नहीं कहेगा। कौन हो भाई अजय कुमार?
अहम अजय कुमार।
तो जो ब्राह्मण बन जाता है वो क्या कहता है फिर? अहम ब्रह्मा। वो यही कहेगा कि ब्रह्म को इतना जानता हूं मैं। तो ये अपरोक्ष ज्ञान है। वहां पर जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रह जाता, फिर आप वो हो। तो कहते हैं शब्द के प्रमाण से जाना जा सकता है, ऐसा हमने सुना है। आपने ठीक सुना है, शब्द प्रमाण से जाना जा सकता है। तो जानने का मतलब शब्द जानते हैं उसको, शब्द का वो ऑब्जेक्ट बन गया? नहीं, शब्द का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। वो शब्द जो है केवल इंडिकेटर है, उस तरफ जाने के लिए हमें इंडिकेशन करते हैं। शब्द भी वहां तक नहीं पहुंच पाते, मगर शब्द के द्वारा हम उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर बोलते हैं श्रुति भी ऐसा कहती है कि यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म आत्मा सर्वांतर है। यह आत्मा सबके अंदर है और यह सबका अपरोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष, परोक्ष नहीं हो सकता कभी, कभी वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, मगर अपरोक्ष ज्ञान उसका हो सकता है। आप ब्राह्मण को टेस्ट ट्यूब में नहीं ला सकते, आप ब्राह्मण बन सकते हो। जिससे कि आत्मा इस प्रकार नित्य और निर्विकार सिद्ध हो चुका है, इसलिए तू युद्ध कर, अर्थात युद्ध से उपराम ना हो। भगवान कहते हैं कि वे अर्जुन तुम युद्ध करो। अब लोगों ने यहां ये प्रश्न कर दिया, भगवान तो युद्ध करने को बोलते हैं। भगवान ने कह दिया युद्ध करो, हमको युद्ध करना चाहिए, घर में जाएंगे अब फाइट शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान यहां कहते हैं, यहां उपयुक्त कथन से युद्ध की कर्तव्यता का विधान नहीं है। देखो, भगवान युद्ध नहीं चाहते थे। आप पहले उसका संदर्भ समझ लो। भगवान युद्ध को रोकने की पूरी चेष्टा की थी कि युद्ध ना हो। युद्ध रुका नहीं, अर्जुन को वहां पर और भगवान को आना पड़ा युद्ध के लिए। युद्ध भूमि में आने के बाद में अर्जुन को कुछ हो गया और उस होने के कारण उसको शोक हो गया, मोह हो गया। तो भगवान का एकमात्र कारण यहां पर उद्देश्य यही है कि वो शोक और मोह को हम हटा दें वहां से, जिसके कारण वो कर्तव्य में बाधा आ गई है। अर्जुन का कर्तव्य क्या है? अभी युद्ध करना है। मगर वो युद्ध नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि शोक और मोह आ गया बीच में। तो शोक और मोह को हटाने की चेष्टा भगवान कर रहे हैं। शोक मोह अगर हटा दें तो युद्ध शुरू हो जाएगा। शोक मोह से प्रतिबद्ध होकर चुप हो गया था, उसके कर्तव्य के प्रतिबंध मात्र को भगवान हटाते हैं। बहुत लोग ये प्रश्न कर देते हैं, भगवान ने युद्ध करने क्यों कहा? तो भगवान ये कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं कि उसका प्रतिबंध हटा रहे थे भगवान, केवल शोक मोह हटाने की चेष्टा कर रहे थे कि शोक मोह हटा दिया जाए, इसलिए युद्ध कर यह कहना अनुमोदन मात्र है, विधि है, आज्ञा नहीं है। इट्स नॉट एन ऑर्डर। तस्मात युद्ध भारत, ये ऑर्डर नहीं है। गीता शास्त्र संसार के कारण रूप शोक मोह आदि को निवृत्त करने वाला है, प्रवर्तक नहीं है। बहुत अच्छी तरह से समझना, बहुत लोग ये गलती करते हैं। तो गीता शास्त्र में तो केवल काम करने को बोलते हैं, काम करना कभी नहीं। गीता शास्त्र संसार के कारण रूप शोक मोह आदि को निवृत्त करने वाला है। गीता का एकमात्र काम ये है कि आपका जो शोक और मोह है, जिसके कारण आपका वो संसार बीज बन जाता है, आपको जहां सुख मिलता है वो काम आप बार बार करते हो और अपनी वासना बढ़ा लेते हो, वो आपका संसार का बीज हो गया। उस बीज के कारण आपका जन्म बार बार होता रहता है। गीता शास्त्र का कारण रूप शोक मोह आदि को निवृत्त करने वाला है, प्रवर्तक नहीं है। उसको बढ़ाने की चेष्टा नहीं कर रहा है गीता। गीता आपकी वासना का क्षय हो इसका प्रयास करता है, उसके अंदर वृद्धि हो ऐसा नहीं है। इस अर्थ को साक्षीभूत दो ऋचाओं को भगवान उद्धृत करते हैं। दो वो भगवान भी जो है ना, उपनिषद से दो मंत्र उठा के लाए हैं यहाँ पर। अब आपको डाउट होगा भगवान उपनिषद क्यों रेफर करते हो? तो गीता तो भगवान ने 5000 साल पहले कही थी, उपनिषद उसके पहले हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे को मानो नहीं मानो, मगर उपनिषद में भी ये चीज लिखी हुई है। तो अगले जो दो श्लोक हैं वो कठोर उपनिषद से उठाए हुए हैं। तो इसको हम लोग अब अगले दिन देखेंगे। और यहाँ पर भगवान कहते हैं, जो तू मानता है कि मेरे द्वारा युद्ध में भीष्म आदि मारे जाएंगे और मैं ही उनका मारने वाला हूं, यह तेरी बुद्धि सर्वथा मिथ्या है। ये तुम्हारी बुद्धि सर्वदा मिथ्या है। अर्जुन का तो यही था ना, मेरे कारण ये सब मारे जाएंगा, मैं इनको मारूंगा। 100% कर्तृत्व था, हमारा भी कर्तृत्व है 100%। कर्तापन बहुत स्ट्रांग है, तो कर्तापन कैसे छूटेगा? तो अगले दो मंत्र के अंदर हम लोग देखेंगे। ओ ॐ।